नमस्कार, आज हम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा इस पर कुछ गहराई से बात करने वाले हैं और इसमें भी एक खास अध्याय है संतानों पर प्यार और आशीष लुटाने वाली माँ, ये वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के बारे में है।
बिल्कुल, ये अध्याय उनके मातृत्व स्वरूप को दिखाता है, खासकर उस समय जब 1984 की रामनवमी के बाद पूज्य गुरुदेव वो अपनी सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए थे।
हाँ, वो गहन एकांतवास वाली साधना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वंदनीय माता जी का जो वो निस्वार्थ प्रेम था, उनकी जो क्षमताएं थी और कैसे उन्होंने मतलब अपनी संतानों की तरह मानने वाले अनगिनत लोगों को उस मुश्किल समय में संभाला,
जी जी,
उसे पुस्तक के कुछ उदाहरणों से समझें। तो शुरुआत करें 1984 के उस माहौल से।
हाँ, वो दौर ही ऐसा था जब गुरुदेव ने आम लोगों से मिलना एकदम बंद कर दिया, तो स्वाभाविक है अनुयायियों में एक उदासी सी छा गई थी, खालीपन लग रहा था सबको।
उनके सीधे मार्गदर्शन की कमी महसूस हो रही होगी।
बिल्कुल, और उस समय जैसा बताया गया है केवल दो ही लोग थे जिन्हें गुरुदेव से नियमित मिलने की इजाजत थी।
एक तो स्वयं वंदनीय माता जी, जो ना सिर्फ उनकी सहधर्मिणी थी बल्कि साधना में उनके एक तरह से रक्षक भी थी अपने सामर्थ्य से।
जी हाँ, उनके स्थूल शरीर की रक्षा भी, और दूसरे थे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी।
तो ऐसी स्थिति में मतलब जब गुरुदेव एकांत में थे, माता जी ने कैसे संभाला इतने सारे लोगों को?
यहीं पर वंदनीय माता जी का वो रूप सामने आया जिसकी बात यह अध्याय करता है। वो माँ जो शायद पहले पर्दे के पीछे से शक्ति देती थी, अब वो बिल्कुल सामने आ गई।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने वो जो खालीपन था, जो दुख था गुरुदेव के एकांतवास का, उसको भरने का बीड़ा उठाया। अपने प्यार से, अपने आशीष से वो खोई हुई हंसी वापस लाई सबके चेहरों पर।
पुस्तक में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है डॉक्टर फूल सिंह यादव जी का। वो शायद कुछ निराश होकर ही शांति कुंज पहुंचे थे उस समय।
हाँ बिल्कुल, और पहुंचते ही जो हुआ वो हैरान रह गए। वंदनीय माता जी ने उन्हें सीधे नाम से पुकारा, फूल सिंह बेटा कब आया?
अरे, बिना किसी खास परिचय के।
हाँ, और सिर्फ नाम नहीं लिया, उनके परिवार के लोगों का नाम ले लेकर पूछा कि सब कैसे हैं। डॉक्टर यादव तो मतलब एकदम चकित थे कि माता जी को ये सब कैसे पता।
ये तो सच में अद्भुत अनुभव रहा होगा, पर बात शायद यहीं खत्म नहीं हुई।
नहीं नहीं, माता जी ने फिर आगे कहा, क्या सोच रहे है? माँ को क्या अपने बच्चों की पहचान करानी पड़ती है? गुरुजी नहीं मिलते तो क्या हुआ, मुझे तेरे प्रमोशन का ध्यान है, तू चिंता मत कर।
ओ, ये तो मतलब।
बस ये सुनकर डॉक्टर यादव की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बाद में यही कहा कि भाई गुरुदेव तो कृपालु हैं ही, पर माँ तो हजार गुना ज्यादा कृपालु हैं, वो तो बिना मांगे ही सब दे देती हैं।
ये दिखाता है कि वो कितना व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ाव महसूस करती थी सबसे।
बिल्कुल, और ये सिर्फ डॉक्टर यादव का अनुभव नहीं था।
अच्छा, और लोगों के साथ भी ऐसा होता था?
जी, पुस्तक में शिव प्रसाद मिश्रा जैसे कार्यकर्ताओं के हवाले से बताया गया है कि ये रोज की बात थी। लोग आते थे, माता जी के सामने बैठते थे और वो बिना उनके कुछ बोले ही
समझ जाती थी।
हाँ, चाहे कोई बीमारी हो, घर की कोई उलझन हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, बच्चों के ब्याह की चिंता हो, वो सब जान लेती थी।
और सिर्फ जान ही नहीं लेती थी, समाधान भी करती थी।
जी हाँ, पुस्तक यही कहती है कि वो अपनी तप की शक्ति से उन समस्याओं का हल भी निकाल देती थी। लोग रोते हुए आते थे और जब लौटते थे तो हंसते हुए।
कमाल है।
और कोई कहता कि माता जी आपकी कृपा हुई, तो वो कहती बेटा माँ कृपा नहीं करती, प्यार करती है, ये सब तो प्यार में ही होता है।
ये उनके नेतृत्व का एक अलग ही तरीका था, मतलब अधिकार से नहीं सिर्फ प्रेम से।
बिल्कुल।
इस प्यार का एक और रूप शायद उनके व्यक्तिगत ध्यान रखने में भी दिखता था, जैसे खाने पीने की पसंद का ध्यान रखना।
हाँ हाँ, वो भी अद्भुत था। वो केवल बड़ी बड़ी समस्याएं ही हल नहीं करती थीं। उनको ये तक पता रहता था कि किसको बेसन का हलवा भाता है, किसको गाजर का, किसको तिल के लड्डू पसंद है।
सच में।
जी, और वो बनवा लेती थी चुपचाप, और जब वो व्यक्ति मिलने आता तो एकदम सामने रख देती कि ले बेटा खा ले, बड़े प्यार से खिलाती थी।
इन सब बातों से तो लोगों का ये विश्वास पक्का हो ही गया होगा कि माता जी अंतर्यामी है, उनमें योग की सिद्धियां हैं।
स्वाभाविक है, और ये सिर्फ दिन की बात नहीं थी। दिन में तो वो अपनी इन असंख्य संतानों पर प्यार लुटाती थी और शाम को गुरुदेव के पास उनकी उच्च स्तरीय साधनाओं में भी वो बराबर की भागीदार होती थी।
अच्छा, वो विश्व कुंडलिनी जागरण और पंच वीर भद्र निर्माण जैसी गूढ़ साधनाओं में भी।
हाँ, पुस्तक में गुरुदेव के ही शब्द हैं कि इन साधनाओं में माताजी की भागीदारी के बिना सफलता मिलना मुश्किल था। अत्यंत गूढ़ साधनाएं थीं ये।
तो गुरुदेव स्वयं भी माताजी के इस सामर्थ्य को, उनके मातृत्व को बहुत ऊंचा स्थान देते थे।
बहुत ज्यादा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि माताजी माँ के पेट से माताजी होकर ही पैदा हुई हैं। उन्होंने अपनी साधनाओं की सफलता का, यहाँ तक के सूक्ष्मीकरण की सफलता का श्रेय भी माताजी के उसी मातृत्व संरक्षण और उनकी शक्तियों को दिया।
उनका कहना था कि माताजी की शक्तियों की रखवाली न होती तो शायद उनका शरीर भी साधना काल में टिक पाता या नहीं, कहना मुश्किल था।
जी बिल्कुल। कहते थे कि माताजी के आशीष तो उन्हें भी मिलते रहते हैं।
तो इन सब बातों से, संस्मरणों से और गुरुदेव के अपने शब्दों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वंदनीय माताजी सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की पत्नी ही नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो सचमुच में एक माँ थी जिन्होंने एक बहुत मुश्किल दौर में अपनी इतनी बड़ी आध्यात्मिक संतानों को न सिर्फ संभाला बल्कि उन पर बिना शर्त अपना प्यार और आशीष बरसाया।
निश्चित रूप से उनका जीवन ही जैसे मातृत्व की उस अपार शक्ति का प्रमाण है जो सिर्फ पालती पोसती नहीं बल्कि रक्षा भी करती है और सही राह भी दिखाती है, मुश्किल से मुश्किल समय में भी।
ये वाकई सोचने वाली बात है जब दिव्यता ऐसे शुद्ध निस्वार्थ माँ के प्रेम के रूप में सामने आती है तो ये आध्यात्मिकता और नेतृत्व के बारे में हमारी जो बनी बनाई सोच है उसे कैसे चुनौती देती है या शायद और विस्तार देती है।
हाँ, ये एक गहरा प्रश्न है। मातृत्व में जो ये इतनी बड़ी शक्ति छुपी है उसके और कौन कौन से पहलू हो सकते हैं जिन पर हम आम तौर पर ध्यान नहीं देते, इस पर विचार करना चाहिए।